السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. آج ہم سورۃ الفاتحہ کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. ہم نے آیت نمبر 4 ہاف کی تھی اور ہاف رہتی ہے، تو دیکھتے ہیں اس کو، دیکھتے ہیں ہم نے جو پہلے پڑھا تھا، امید ہے کہ آپ نے اس کے اوپر غور و فکر کیا ہوگا اور ایک ایک آیت کو آپ نے اس کے اوپر تدبر کیا ہوگا. کچھ پوائنٹس میں آپ کو بتا دیتی ہوں کلاس میں، اور کچھ پوائنٹس آپ نے گھر میں ایک ایک آیت کو پڑھنا ہے اور اس کے اوپر غور کرنا ہے اور سوچنا ہے اس کے اوپر، تو آپ کو زیادہ معنی کھلیں گے. اور زیادہ جب آپ غور و فکر کرتے ہیں نا، تو بہت ساری چیزیں انسان پھر خود بھی اس کو سمجھ آنے لگتی. اب اس کے اندر یہ بھی بات ہے کہ جب آپ نماز میں بھی پڑھ رہے ہوں تو تب بھی ان کو اب آپ نے ترجمہ سمجھ لیا اور یاد بھی کر لیا ہوگا، تو ان الفاظ کو ان کے ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ادا کرنا. آپ دیکھیں گے قرآن کریم جو ہے یہ آپ کو بہت کچھ دیتا ہے. آپ کو سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو کچھ چیزوں کو دیکھنے کا جو زاویہ ہے اس کو بدل دیتا ہے. جیسے آج آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں نا، اس طرح سے نہیں پھر آپ دیکھتے. سمجھ لیں کہ آپ پھر قرآن کی عینک سے چیزوں کو دیکھنے لگتے ہیں. جیسے آپ باہر نکلتے ہیں، سن گلاسز لگاتے ہیں، وہ ڈارک ہوتی ہیں، آپ کو ہر چیز ڈارک نظر آنے لگتی ہے نا. آپ ریڈ گلاسز، ریڈ شیشوں والی لگا لیں گے، ریڈ نظر آئے گی، بلو لگا لیں گے، بلو نظر آئے گی. اسی طرح قرآن کی عینک جو لگا لیتا ہے، ان گلاسز کے ساتھ پھر ہر چیز قرآن کے مطابق نظر آنے لگتی ہے. پھر جو آج آپ دیکھتے ہیں، مثلا آج آپ کسی کو بہت مالدار دیکھتے ہیں تو شاید آج آپ کے منہ میں پانی آتا ہو، لیکن کل جب آپ قرآن کی عینک لگا لیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ بھی آزمائش ہے. آپ آج کسی کو دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں اس کو اتنا غم کیوں پہنچا، یہ دیکھو اتنے اس سے گزرا، اس کا کیا قصور ہے. کل آپ جب قرآن کی عینک لگا لیں گے تو آپ کو پھر کسی اور طرح اس کو دیکھیں گے. پھر جب اس کو دیکھیں گے تو سوچیں گے پتہ نہیں اس کے کتنے درجے بلند ہو رہے ہیں آخرت میں، کتنا کچھ اس کو ملنے والا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ابھی. تو قرآن کی جب گلاسز لگ جاتی ہیں نا، تو سب کچھ فرق نظر آنے لگتا ہے. پھر آپ خوبصورت منظر دیکھیں گے تو آپ کو جنت یاد آئے گی، آگ دیکھیں گے، کبھی انگلی جل جائے گی تو جہنم یاد آئے گی. تو بہت ساری چیزیں بدل جائیں گی. اللہ تعالیٰ اس راستے پر ہمیشہ رکھے. تو ہم نے پڑھا تھا ایاک نعبدو، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، اور اس کے اندر ہم نے بہت کچھ دیکھا، اور میں نے آپ کو عبادت کی تعریف بھی بتائی کہ کیا ہے. امام ابن تیمیہ نے عبادت کی ایک اور بڑی جامع تعریف کی ہے کہ عبادت ہر اس قول اور عمل کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، یعنی جو اس کی رضا کے لیے کیا جائے، جو اس کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے. یہ نہیں کہ ہم خود ہی کوئی عمل نکال لیں کہ بھئی اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہو. ہمیں تو رول ماڈل آلریڈی اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں کہ اس زندگی سے اللہ تعالیٰ خوش ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ غایت الحب، محبت کی انتہا مع الظلم. तवाजो के साथ, आजजी के साथ, जिल्लत के साथ। तो इज्जो इनकसारी भी हो, तजलील का इजहार भी हो, जैसे गुलाम अपने आका के सामने जिल्लत का इजहार करता है, और बेतहाशा मोहब्बत भी हो। अब उस लिहाज से देखा जाए तो क्या जिसको हम इबादत करते कहते हैं उसमें मोहब्बत होती है, कि या वो मारे बांधे की होती है, दिल की तंगी के साथ होती है, और उसके अंदर कोई जैसे किसी ने मजबूर करके खड़ा कर दिया, जबर के साथ खड़ा किया, इस तरह से करते हैं। अगर दिल की खुशी ही नहीं और इंतहाई मोहब्बत के जज्बात ही नहीं और दिल का बिछ जाना ही नहीं, तो फिर इबादत क्या हुई? जबकि अल्लाह ताला ने हमें इसी काम के लिए तो पैदा किया है। वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुद, फरमाया कि हमने किसी और चीज के लिए नहीं पैदा किया जिन्नों को और इंसानों को मगर अपनी इबादत के लिए। और इंसान अगर दुनिया में आके यही काम ना करे, और इसी को नहीं आपने समझा कि ये काम कैसे करना था, और इबादत होती क्या है, बस जो वालदैन ने सिखा दिया, एक कारी साहब लगा दिए, उन्होंने आके बता दिया भाई इस तरह नमाज पढ़नी, इस तरह से कुरान पढ़ना, बस वो वहीं का सीखा हुआ, उसके बाद ना कोई पता है इबादत क्या है, ना कोई पता है कैसे करनी है। तो फिर क्या क्या हासिल किया? आपका तो मकसद ही दुनिया में आने का ये था, तो आप इबादत को ही ना समझे, होती क्या है? इसीलिए आप देखें पूरे कुरान का राज सूरह फातिहा में, और सूरह फातिहा का राज इस एक आयत के अंदर है, इस एक आयत में, इय्याक नअबुदु और इय्याक नस्ताईन। तो वैसे हम जुबान से तो कह देते हैं कि अत्तहियातु लिल्लाह, कि मेरी तमाम इबादात जिनका ताल्लुक जुबान से है ना, कौली इबादत, वो अल्लाह के लिए, वो सलावात और आज़ा की भी जितनी इबादत है वो अल्लाह के लिए, और वो तय्यिबात और माल की भी जितनी इबादत है वो अल्लाह ताला के लिए। लेकिन जब ये कह दिया उसके बाद ये पता ही नहीं है कि मैं जो जिन इबादत का नाम ले रही हूँ ये मेरा दिल भी राजी है इन पे, मैं खुशी से करती हूँ, मुझे बहुत मोहब्बत है अल्लाह ताला से। तो यहाँ पे तो पूरी जिंदगी का आपने वादा कर लिया कि अल्लाह मैं तेरी सिर्फ इबादत करती हूँ, और सिर्फ तेरी इबादत करती हूँ और किसी की नहीं, ये आपने वादा कर लिया। और इस वादे के बाद अब आप खुद सोचें, जब आपने किसी को कह दिया कि तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा हूं, अब इसके बाद यानी अगर कोई कहे मसलन मैं आपका नौकर हूं, मैं आपका नौकर हूं और आप मेरे आका हैं, अब इसका मतलब क्या होगा? कि अब आका कुछ हुक्म देगा जो ये नौकर करेगा ना? अगर वो कोई हुक्म ही नहीं देता और इसने कहा है आप मेरे आका हैं, मैं आपका नौकर हूं, चलिए नौकर आपको समझ आती ना, इसलिए मैं ये कह रही हूं, अगर वो कोई हुक्म ही नहीं देता तो फिर वो रब कैसा हुआ वो, और ये गुलाम कैसा हुआ? क्योंकि गुलामी का मतलब तो ये है कि, या नौकर होने का मतलब तो ऑटोमेटिकली उसने ये कह दिया ना कि अब आप मुझे जो हुक्म देंगे मैं वो मान लूंगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है? ये इंतजार है कि अब आप कोई हुक्म देंगे कुछ करने का या किसी चीज से मना करेंगे तो मैं मानने को तैयार हूं, मैं वैसे करने को तैयार हूं, क्योंकि तो आपने मान लिया है ना कि मैं गुलाम हूं, मैं बंदा हूं, तू मेरा रब है, तू मेरा मास्टर है। तो मालिक होने का मतलब यही है, रब होने का मतलब यही है कि वो सिर्फ नाम का नहीं हो, बल्कि अब वो कुछ वो कहेगा ना। और गुलाम होने का भी मतलब ये नहीं कि अब उसके बाद बस कह दिया तो हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, अब तो कुछ नहीं, बस मैंने कह दिया। जब हमने ये वादा कर लिया ना तो हमने बहुत बड़ी बात कह दी है, फिर तैयार भी हैं आप अब्द बनने के लिए, या अभी भी दिल के अंदर ये है कि भाई हम तो किसी की गुलामी नहीं कर सकते, हम तो किसी का कहना नहीं मान सकते, हमें खुद ही पता है कि हमने क्या करना। तो जब आप नमाज में खड़े हुए हैं और आप ये कह रहे हैं तो आप तो बहुत बड़ा वादा कर रहे हैं। इसीलिए तो इल्म लेना जरूरी है कि पता तो चले हम कह क्या रहे हैं। अब तैयार हो जाए फिर, जब आपने कह दिया हम तो, वरना तो ये झूठ है। अगर आप इसके लिए तैयार नहीं है, उसकी गुलामी के लिए, उसका कहना सुनने और मानने के लिए, तो फिर तो आपने जो भी बोला उसके अंदर कोई रूह ही नहीं है, सिर्फ अल्फाज हैं जो रटे हुए हैं। तो हमने ये बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ा हलफ उठा लिया। और आगे वा और इया का, सिर्फ तेरी, नस्ताइन, हम तुझसे, ते सिर्फ तेरे से हम मदद मांगते हैं। अब देखिए इया का दो दफा आया, इसकी एक वजह है। ये भी हो सकता था इया का नाबुदु व नस्ताइन, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और हम तुझसे मदद मांगते हैं। लेकिन दो दफा आने का एक फायदा है इसके अंदर। अगर कहा जाता या का नाबुदु व नस्ताइन तो क्या फर्क था, और अब क्या फर्क है? तो तब ये होता कि हम तेरी इबादत करते हैं और इबादत करने में, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, इबादत करने में हम तेरी मदद चाहते हैं। फिर सिर्फ इबादत में आप मदद चाहते थे, बाकी चीजों के अंदर नहीं। लेकिन ये ओपन है, हर चीज में ही है, अल्लाह हम तेरी मदद चाहते, पूरी जिंदगी के हर फैसले में, हर जगह पर, चाहे वो आखरत का हो, दुनिया का हो, हर मामले में हम तेरी मदद चाहते। तो इसके अंदर जब या कनस्ताइन कह दिया तो ओपन हो गया। दूसरे ये कि या कनस्ताइन में दो बातें आती, एक तेरे से हम मदद तलब करते हैं, नंबर टू तेरे सिवा किसी और से नहीं करते। यानी आपने सिर्फ अल्लाह ताला से मदद तलब करने का आपने इकरार किया और बाकियों को डिनाई किया है, बाकियों का आपने इनकार किया है कि किसी और से हम तलब नहीं करते। तो ये आपने वादा कर लिया अल्लाह ताला के साथ। और जब इंसान अपने आप को अल्लाह ताला की इबादत के लिए तैयार कर लेता है, ये वादा कर लेता है मैं सिर्फ तेरी इबादत करता हूँ, सिर्फ तुझसे मांगता हूँ, हदीसे कुदसी में आता है अल्लाह ताला फरमाता है इब्ने आदम मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा, मैं तेरे दिल को गिना और तवंगरी से और तवंगरी और मालदारी से भर दूंगा। नहीं, ये नहीं है कि उसके पास पैसे बहुत आ जाएंगे, मतलब अल्लाह ताला उसको और तरह से भी मालदार कर सकता है। और आज फितनों के दौर में तो अल्लाह ताला की इबादत करना, इसका अजर इतना ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो फितनों के दौर में अल्लाह ताला की इबादत करता रहेगा उसको अल्लाह ताला इतना अजर देगा जैसे वो हिजरत करके मेरे पास आ गया। सोचें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आज जिंदा होते और आप हिजरत करके उनके पास पहुंच जाते, जो आपको हिजरत करने का सवाब मिलना था वो सवाब फितनों के दौर में अल्लाह ताला की इबादत करने का है, क्योंकि इस वक्त में इबादत मुश्किल है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इबादत सिर्फ रुकू सजदे करने का नाम नहीं, सिर्फ इबादत ये नहीं है कि आप नमाजें पढ़ लें और आपने रोजा रख लिया तो इबादत हो, बल्कि पूरी जिंदगी में अल्लाह ताला की बात को मानना अनकंडीशनली, ये जरूर नोट करें, गैर मशरूत तरीके तौर पर मुकम्मल सबमिशन। ये नहीं कि हाँ ऐसा होगा तो फिर ये होगा तो फिर ऐसे होगा तो फिर मैं करूंगी वरना मैं नहीं करूंगी, और ये ना हुआ तो फिर नहीं मैं मान सकती, ऐसे नहीं। इताअत करनी है चाहे जो भी हो जाए, तब है वो इबादत पूरी तरह। आप जैसे गुलाम होता है वो, उसका कुछ भी अपना नहीं होता, मैंने आपको पहले बताया था ना, उसके तो अपनी प्रॉपर्टी भी अपनी नहीं होती, उसका पैसा अपना नहीं होता, उसके आराम अपना नहीं होता, उसकी छुट्टी अपनी नहीं होती, सो सारा कुछ ही उसके मालिक का होता है। इसके लिए तैयार हैं आप? सोचें कि हम क्या कहते हैं, कितना बड़ा वादा करते हैं, और दिन में कितनी दफा करते हैं, 25-30 दफा तो करते ही है ना, लेकिन हम सोच नहीं रहे होते, हमारे दिल उस तरह मोहब्बत से भरते क्यों नहीं है? हम कहीं यह करना आबू तो हमारा दिल मोहब्बत से भर जाए, क्योंकि इबादत है ही वो जो इंतहा दर्जे की मोहब्बत। ये भी नहीं कि इसमें थोड़ी सी मोहब्बत, हम वह चीजों से मोहब्बत करते हैं, कुछ थोड़ी बहुत इससे भी कर ली, थोड़ी बहुत उससे भी कर ली, नहीं, इंतहा दर्जे की मोहब्बत कि उससे ऊपर किसी की मोहब्बत ना। समझ रहे हैं आप सूरह फातिहा को? मामूली बात नहीं है। और मदद भी हम सिर्फ तुझसे तलब करते हैं। अब एक है हमारी मदद तलब करना, मसलन मैं आपको कहूँ मुझे पानी ला दें, आप मेरा ये काम कर दीजिए, आज मुझे वहां पे ले जाएं, तो ये भी तो मदद मांगना। वो मदद नहीं कही जा रही, मदद वो जो के जैसे कि गायबाना किसी को समझना के बगैर असबाब के कोई मदद कर सकता है, वरना वैसे तो इस दुनिया को चलाने के लिए हर एक को दूसरे की मदद की जरूरत है, वरना दुनिया के काम तो एक बंदा खुद थोड़ी सारे कर सकता है। अब आपने अपने घर के कामों के लिए को मददगार रखे होंगे, कहीं जॉब्स के ऊपर लोग मददगार हैं जो के काम करते हैं, किसी ने कोई हेल्पर रखा हुआ है दुकान पे, तो इस तरह से तो कोई मसला नहीं है। ईसा अलैहि सलाम ने फरमाया था ना, मन अंसारी अल्लाह, कौन है मेरा मददगार अल्लाह के रास्ते में, तो पैगंबर ने भी मदद मांगी। तो बात ये नहीं है कि आपने मदद मांग ली किसी से तो वो शिर्क हो गया, ये इसको समझ लें। बात ये है कि अगर असबाब से हट के मदद मांगी है, एक है ना सबब, आप सबब देखते हैं, ये बंदा है आपने उसको कहा कोई मसला नहीं है, आप उससे मदद मांग सकते हैं, मगर जब आप याद रखें, ये भी बात याद रखें, जब मदद उससे भी मांगते हैं ना, आपने मुझे कहा कोई चीज पकड़ा दे, तो ये याद रखें वो बंदा भी मदद तभी कर सकता है जब अल्लाह का इज़्ज़न, वरना वो वहीं पे गिर सकता है, वो पैरालाइज हो सकता है, वो चीज तक ही नहीं पहुंच सकता, कुछ भी हो सकता है। जैसे आप डॉक्टर के जाते हैं, अब आप एक मदद मांग रहे हैं ना कि मुझे मतलब जो भी मेरी बीमारी है वो दूर हो, अब ये नहीं कि डॉक्टर ने मुझे शिफा देनी या ये दवा है जो मुझे शिफा दे रही है, उसमें भी जहन में कॉन्सेप्ट ये बिठाएं अल्लाह ने करना है, अल्लाह सुभाना ताला करेगा तो होगा, डॉक्टर के हाथ में नहीं है। छोटी से छोटी चीज कि कोई पानी तक लेकर आएगा तो वो भी मेरे तक तब तक ही पहुंच सकता है जब तक कि अल्लाह ताला चाहता, जबकि अल्लाह का इज़्ज़न हो। तो जो भी जराए हैं, मीन्स हैं, जिनके जरिए मदद आती है वो भी अल्लाह की तरफ से, और बगैर जरिए के हम सोचे ऐसा ना, अभी तो जरिया है ना, मतलब आपने कहा भी ये लेकर आए, उसके हाथ हैं, वो गया है, उसने बात सुनी है, गया है, लेकर आया। अच्छा, अगर आप ये कहें कि बगैर जरिए के ही कोई मदद आ जाए, मसलन है, कोई सबब नहीं है, लेकिन आपने यहां बैठ के कहा या गौसे आजम मदद, या अली मदद, आप क्या सबब है इसके अंदर, क्या जरिया है इसके अंदर, कोई भी नहीं। उन तक बात पहुंचने का जरिया आप क्या ये कहना चाहते हैं कि वो हई और कयूम है, यहां पे भी बैठे मेरी ये बात सुन रहे हैं, वहां पे भी सुन रहे हैं, मैं जहां पे उनको पुकारूंगी वो सुनेंगे भी और मेरी मदद करने पर कादिर भी हैं, ये सारा आपने मान लिया। ये है फिर जहां पे शेर कहा जाता है, और ये है वो जो कि इतनी खतरनाक बात है, क्योंकि जन्नत की चाबी तौहीद है, याद रखें जन्नत की चाबी तौहीद है, तौहीद वाला गुनाह गार भी होगा तो एक दिन जन्नत में दाखिल हो जाएगा, लेकिन अगर शिर्क है इस तौहीद के अंदर, मिलावट है, तो अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा, शिर्क को अल्लाह ताला ने माफ नहीं करना, और जिस गुनाह को चाहे माफ कर, जिस चीज में शुबा भी हो, शक भी हो शिर्क का, वो भी ना करे। देखिए, अगर आप किसी और को भी पुकारते हैं, किसी का नाम लेके भी, या फलां मदद या जो भी कहते हैं, तो उसका नुकसान एक सबसे पहले ये कि जिसको पुकारोगे वो आपकी पुकार सुन ही नहीं सकता। नंबर टू, वो आपके कोई काम नहीं आ सकता। नंबर थ्री, आखरत में ये शिर्क ले डूबेगा। अल्लाह ताला ने कुराने पाक में फरमाया, अक्सर लोग ईमान नहीं रखते मगर शिर्क के साथ, यानी उन्होंने ईमान के साथ शिर्क को मिक्स किया होता है। ऐसे नहीं कि वो पूरे मुशरिक हैं, मगर उनके ईमान के अंदर मिलावट होती, शिर्क की आमेजिश होती। आप दूध के अंदर पूरी देग में पेशाब के 2 कतरे डाल दें, पियेंगे उसको? शिर्क तो इतनी बड़ी नजासत है, वो सारी तौहीद को खराब कर देगी अगर शिर्क का जर्रा बराबर भी तौहीद के अंदर शामिल हो गया। तो जब आप कोई मीन्स, कोई जरिया इस्तेमाल करें, अब डॉक्टर का आपको पता है, डॉक्टर दवाई देगा या कोई सर्जरी करेगा या कोई कुछ करेगा, वो गैब से तो नहीं बैठ के आपकी मदद कर रहा। अगर आप ये सोचेंगे ये गैब से मेरी मदद कर देगा, इसके पास इतनी पावर्स हैं कि ये जो भी कर सकता है, तो ये है वो जो शिर्क तक पहुंचाता है। समझ आई? तो इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाज लोग ये कहते हैं अच्छा फिर हम इससे मदद मांग ले, तो फिर क्या इससे भी ना मदद मांगे, उससे भी ना मांग। तो आपको समझना है कि कौन सी मदद आप मांग सकते हैं और कौन सी मदद आप नहीं मांग सकते। और अल्लाह ताला से हर किस्म की मदद माने, सहाबा का तो सुभान अल्लाह ये तरीका था। देखें, नमक भी मांगना होता ना तो अल्लाह ताला से मांगते पहले, यानी आपने किसी कोई चीज मांगनी, पहले अल्लाह ताला से मांग ले फिर उस बंदे से मांग ले। वो जो नाजायज नहीं है उस बंदे को कहना कि भाई आप, अब आप फोन यूज करते हैं, कुछ कुछ जरिया यूज किया ना आपने, लेकिन आप वैसे ही बैठे हुए सोचे मेरी आवाज फलां था, क्योंकि उसके पास इतनी ताकत है, खुदाई ताकतें हैं ना ये, तो कि ऐसी खुदाई ताकतें उसके पास है, यहाँ पे शिर्क आ जाता है। जबकि अल्लाह ताला क्या फरमाता है, हदीस कुदसी है, बड़ी प्यारी लंबी हदीस है। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदो तुम सब भूखे हो सिवाय उस शख्स के जिसको मैं खिलाऊं, तुम मुझसे मांगो मैं तुमको खिलाऊं। तो देखिए ना, यानी खाना भी अल्लाह देता है। इन्हें हम कहें कि मेरी कंपनी है वो मुझे पे करती है तो हम खाते हैं, फलां है तो हम खाते हैं, वरना तो हम खाए ही ना। अच्छा, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, ये हज़रत अली हजवेरी को कहते हैं ये दाता हैं, ये यहाँ पे हैं तो फिर ये सारे शहर को यहाँ पे रिस्क मिल रहा है, और ये फलां हैं तो फिर समंद्रों को इन्होंने रोका हुआ इसलिए तूफान नहीं आता। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम भूखे हो सब सिवाय जिसको मैं खिला दूं, तो तुम मुझसे मांगो ना, कहा गया मांगो। देखिए, हर एक जो दुनिया में है उससे आप दूसरी तरफ मांगे, तीसरी दफा मांगे ना, तो वो इरिटेट होने लगता है, तंग होने लगता है कि भाई क्या आपने हमारा ही देख लिया, घर आप हर वक्त मांगने आ जाते हैं और आप उनका फिर फोन उठाना ही बंद कर देते हैं, कि इनका तो काम ही है मांगते रहना। ठीक है, आप उनको ब्लॉक कर देते हैं, आप बात नहीं करना चाहते, लेकिन अल्लाह ताला वो हस्ती है जिससे ना मांगा जाए तो वो नाराज होता है। सुभान अल्लाह, यही फर्क है खालिक और मखलूक के अंदर। मखलूक तंग होती है, खालिक किससे खुश होता है जब आप मांगते। और सबसे पहले ही कुराने पाक में मांगना ही तो सिखाया गया है। इससे अपने आप को बेनियाज ना समझा करो, हमने क्या मांगना है, हमारे पास मांगने के लिए कुछ है ही नहीं, सारा कुछ है हमारे पास। नहीं, ये एरोगेंस है, ये तकब्बुर है। अल्लाह ताला हम हर वक्त ही तेरे मोहताज हैं, कोई वक्त ऐसा नहीं है कि आप अल्लाह ताला के मोहताज ना हो। बस सिर्फ ये कि आप रियलाइज नहीं शायद करते, एक सांस लेने में भी आप अल्लाह ताला के मोहताज हैं, उसका इज़न होता है तो वो सांस आती है। ये अलग बात है कि अल्लाह ताला बिन मांगे भी हमें बहुत कुछ अता किए हुए, काफरों को कितना कुछ अता किए हुए, सबको अता कर रहा है बिन मांगे, लेकिन उसको अच्छा लगता है जब आप मांगते हैं। तो फरमाया कि ए मेरे बंदो तुम सब बरहना हो, यानी नंगे बदन हो, तो मुझसे लिबास मांगो मैं तुम्हें लिबास दूंगा। कभी आज तक आपने लिबास मांगा? नहीं मांगा, इसलिए कि पहले ही हमारे पास काफी है, हम तो खुद ही जाके ले आते हैं, हमें मांगने की क्या जरूरत। खाना तो हमारे पास पहले ही फ्रिज में, हमें मांगने की क्या जरूरत। पानी हमारे पास है, हमें मांगने की क्या जरूरत। नहीं, इस पे भी मांगे, हम तेरे मोहताज, तू हमें पहना, तू हमें खिला। तो लिबास पहनते बाद भी ये सोचे कि अल्लाह की देन है, ये मेरा थोड़ी है। हर चीज से उसको पहचाने। मैंने आपको कहा ना कि जब आप कुरान की ऐनक लगा लेंगे ना, हर चीज से अल्लाह तआला को पहचानेंगे, उसमें रब की मोहब्बत नजर आएगी आपको, उसकी बख्शिश नजर आएगी, उसकी देन नजर आएगी। फिर ऐ मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हो सिवाय जिसके जिसको मैं हिदायत दे दूं। तो मुझसे हिदायत मांगो, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। ये भी कीमती नेमत है हिदायत, ये भी मांगो। ये ना कहो हमें सब पता है, हमें कौन बताएगा, लो अब हमें ये सिखाएंगे कुरान, हम इससे सीखेंगे, जैसे कि हमें नहीं पता कि कैसे जिंदगी गुजारनी। नहीं, हमें नहीं पता, आज ही अल्लाह ताला को पसंद है। तो फिर फरमाया, ऐ मेरे बंदो, तुम सब गुनाहगार हो, कोई गुनाहों से पाक नहीं है। फरमाया, तुम सब गुनाहगार हो और सिर्फ मैं गुनाह बख्श सकता हूं, तो मुझसे बख्शिश मांगो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह, के बख्शने वाला खुद फरमा रहा है, तुम मुझसे बख्शिश मांगोगे ना, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तो फिर देर किस बात की, फिर क्यों नहीं बख्शिश मांगते। तो दुनिया की चीज हो या आखरत की, हर चीज सिर्फ अल्लाह के हाथ में, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो, नमक तक। कि अगर सहाबा वो अल्लाह ताला से मांगते हैं, तो सोचे छोटी से छोटी चीज जिसको हम कुछ वो अहमियत नहीं देते, उसे लेके बड़ी से बड़ी चीज हिदायत और जन्नत तक अल्लाह ताला से ही मांगनी। और जो चीजें हमें मिल रही होती ना, इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि मसलन आपको अगर जैसे मेल है, आपके मेल आपको ईमेल में भी आपको खत आ सकता है, आपको टेक्स्ट में भी आ सकता है, आपको डाकिया भी लेके आ सकता है, डिफरेंट जराए हो सकते हैं ना, लेकिन सोर्स एक है ना पीछे, जहां से वो खत आया। इसी तरह आप इसको ऐसे समझिए कि रिस्क है, आपको रिस्क दुकान से भी मिल सकता है, जॉब से भी मिल सकता है, कोई और मजदूरी करके भी मिल सकता है, किसी तरह से भी मिल सकता है, लेकिन उसका सोर्स पीछे वो नौकरी नहीं है, वो दुकान नहीं है, वो अल्लाह ताला की जात है। जैसे मैंने आपको ये मेल का बताया, अब ये नहीं आप कहेंगे कि ये देखो व्हाट्सएप कितना अच्छा है कि ये मुझे खत इसने दिया, और डाकिया कितना अच्छा है, आपने मुझे ये खत दिया। वो उसने नहीं दिया, उसने सिर्फ पहुंचाया, वो सिर्फ हाथ थे पहुंचाने वाले, आप उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं, मगर ये मत समझे कि ये उसी की देन है। ठीक है, ये छोटी सी मिसाल से मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि इस तरह से आप समझे। और वो क्यों ना देगा जिसके खजानों का हाल किया है, कि फरमाया, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारा अव्वल और आखिर, अगला पिछला, जिंदा मुर्दा, जिन इंसान, अब इसमें कोई रह गया, कोई भी नहीं रहा ना, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी इंसान तक, और जिन्नों में हर जिन जब से पैदा हुआ और जब तक कयामत तक, जितने जिन है, और बच्चा, बूढ़ा, जवान, मुसलमान, काफिर, जो मर चुके वो भी, जो जिंदा है वो भी, सारे जमा हो जाए और मुझसे मांगने लग जाए, और मैं सबकी दुआएं कबूल कर लूं, जितना जिसने कहा सब उनको अता कर दूं, अपनी मर्जी से मांग रहे हैं, जो चाहे मांग, मैं सब अता कर दूं, तो भी सबको देने के बाद भी मेरे खजानों में इतनी सी कमी भी नहीं वाकई होगी जितनी समंदर में सुई डबो के निकाली जाए। मुझे बताएं, सुई डबो के निकाल के देखें कभी समंदर में कोई कमी आई, कोई कमी आई? उसके खजाने इतने हैं, उससे सवाल नहीं हम करते, और अपने जैसे मोहताजों से सवाल करते, हर इंसान मोहताज है। मैं ना कि ऐ मेरे बंदो, तुम सब मोहताज हो, सबको खाने की भी जरूरत है, लिबास की भी जरूरत है, हिदायत की भी जरूरत है, बख्शीश की भी जरूरत, सारे इंसान है ना, लेकिन हमें इंसानों के पास चले जाते और उनसे मांगने से नहीं शर्माते, और अल्लाह ताला से मांगने से शर्माते हैं क्या? या फिर ये समझते कि उसने देना नहीं, वो तो खुद फरमा रहा है, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला से जो चीज भी आपको मांगनी हो वो अल्लाह ताला से डायरेक्ट मांगे। जिस रब ने इबलीस की भी दुआ को सुन लिया और उसको दे दिया जो उसने मांगा था, तो वो क्या कोई इंसान इबलीस से ज्यादा तो नहीं वर्स हो सकता। इसलिए ये सोचना फलां जगह जाएंगे तो औलाद मिलेगी, फलां जगह जाएंगे तो शिफा मिलेगी, फलां के दर पे जाएंगे तो हमारी मुसीबत दूर हो जाएगी, हमारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे, फलां ऐसा करेगा तो नहीं, ये अकीदा ही नहीं रखना। तो ये फला मुश्किल कुशा है या हाजत रवा है या दस्तगीरी करने वाला है या दाता है या गौसे आजम है, ये सब इया का नस्ताइन के अकीदे के खिलाफ है। कोई किसी ने कहा कवालियों में लोग सर तो बहुत धुनते हैं, कभी सोच भी लिया करें कि ये कहा क्या जा रहा है। ख्वाजा ना देगा तो फिर कौन देगा। अब देखिए कितनी बड़ी शिर्क की बात है कि ख्वाजा ना देगा तो फिर कौन देगा। कुफरिया कलमात यही तो है, और कुफर क्या होता है। इकबाल ने कहा था ना कि गैरों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफिर ही क्या है। यही तो कुफर है, कुफर करते हैं और फिर या कनस्ताइन कहते। अभी कह रहे हैं अल्लाह मैं तेरा नौकर, मैं तेरा गुलाम, मैं सिर्फ तेरे ही दर से मांगता हूं, मेरा तो और कोई है नहीं। और फिर जाके नमाज खत्म की और चादरें चढ़ाने लग गए, क्योंकि यहाँ पे चादर चढ़ाएंगे तो ये खुश होंगे, यहाँ पे देख देंगे तो ऐसा होगा, वहां पे धागे बांधने लग गए। तो या का नस्ताइन को समझें। और अरबी में मदद के लिए और भी अल्फाज है, नसर भी है मदद, मगर यहाँ पे आउन से ये वो मदद होती है कि जब इंसान अपनी पूरी कोशिश कर ले, उसके बाद जब उसने अपनी पूरी कोशिश कर ली उसके बाद कहता है कि बस मेरी लिमिट हो गई, मैंने अपनी जितनी मेरे पास ताकत और हिम्मत थी मैंने लगा ली, अब आगे ए अल्लाह तू मदद फरमा। ये है आनत, ठीक है। तो ये जरूरी है कि इंसान खुद कोशिश करे फिर मदद के लिए पुकारे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में लड़ने के लिए खड़े हो गए थे, सहाबा को लेकर पहुंच गए थे, उसके बाद अल्लाह ताला से मदद मांगी थी। ये नहीं कि घर पे जाके बैठ गए और फिर अल्लाह ताला से मदद मांगी हो, तो तब अल्लाह ताला ने फरिश्ते उतारे थे। तो अब हाथ पैर तोड़ के बैठ जाना और कहना बस अल्लाह ताला हमें यहीं पे खिला देगा और यहीं पे बिला देगा और सारा कुछ खुद ही हो जाएगा, क्योंकि बस तू गैब से करता रहे, हमने क्या करना है। बस जी अल्लाह ताला की होगा इज़्ज़त तो हो जाएगा, तो आप भी तो कुछ करें ना। तो इसलिए या का नस्ताइन का मतलब ये नहीं होता कि इंसान खुद कोशिश ना करे। दूसरी तरफ एक और मिसकंसेप्शन जो है वो ये है कि हम सिर्फ उस वक्त मांगते हैं, या कहें कि उस वक्त सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ आते हैं जब हमने कुछ मांगना होता है, यानी अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक। बाज लोगों का तो ऐसा है कि यानी एक विश लिस्ट होती है ना इंसान के पास, ये मुझे चाहिए, बस कब कुछ चाहिए होगा फिर अल्लाह ताला ये दे दे ये दे दे दे, बस उसके अलावा कोई अमल दखल नहीं अल्लाह ताला का हमारी जिंदगियों में, ना हमने कोई बात उसकी माननी है, ना हमने कोई, बस अपनी हमारी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी होनी चाहिए और उसमें देर भी नहीं लगनी चाहिए, जो ही हमने मांगा उस वक्त मिल भी जाना चाहिए। अगर देर हो गई तो फिर हमें बड़ी मायूसी हो जाती है, हमारी तो दुआएं कबूल नहीं होती, चलो या हम भी वैसे ही नाराज हो जाते, छोड़ो नमाजों को हमने पढ़ के क्या करनी जब हमारी दुआ ही नहीं कबूल हुई, हमने तो बड़ा मांगा था। यानी आपकी नमाजें भी इसलिए कि आपको आपकी विश लिस्ट पूरी हो जाए, आपका अल्लाह ताला की तरफ आना भी इसलिए सिर्फ कि हमारी ख्वाहिशात पूरी होनी चाहिए, मेरी डिमांड्स पूरी होनी चाहिए। यानी इतना धोस वाला रवैया रखते हैं। अब इसमें बताएं कहां से मोहब्बत है इंतहा की और कहां पे आजी है ऐसी बातें करना। ये अल्लाह ताला से ताल्लुक तुम्हारा सिर्फ चीजें लेने का है। हमें तो कोई ऐसा करे तो हम फौरन कहते हैं कितने मतलबी हैं। अल्लाह ताला ने आगे आप पढ़ेंगे कुरान करीम में बहुत जगह ये बयान फरमाया है कि ऐसे लोग हैं जब फिर उनको जब उनकी कश्तियां भंवर में फंस जाती हैं तो फिर अल्लाह अल्लाह ही करते हैं उसके बाद भूल जाते हैं। तो कहीं यही ताल्लुक तो नहीं है अल्लाह ताला के साथ। तो मांगे उससे मदद जरूर मांगे मगर उसके साथ उससे पहले क्या है इया का नाबूद हुआ उसके बंदे बन के रहे। या का नस्ताइन पहले नहीं आया या का नाबुदू पहले आया। हिकमत समझ रहे हैं आप बंदे बन के रहें और उसके बाद कहें ए अल्लाह हम सिर्फ तुझसे मदद चाहते। हमारा तो यानी जैसे ऐसे कोई इंसान कह नहीं रहा होता अल्लाह मेरा तो और कोई है ही नहीं मैं किसके पास जाऊं मैं कहाँ जाऊं अल्लाह सिर्फ तू ही तो है जो मेरी मदद कर सकता है तू ही तो है जो मेरे काम संवार सकता है तू ही तो है जो मेरी दुआएं सुन सकता है। मेरे तो काम बन ही नहीं सकते अल्लाह सिर्फ तेरी ये नहीं है कि नस्ताहीन हम मदद चाहते हैं बस सिर्फ तुझसे। कितनी दफा इकरार करते हैं ये अल्लाह अकबर। अल्लाह करे कि हमें ये बातें समझ आ जाए और हम इनके मुताबिक वाकई अल्लाह ताला के बंदे बन के रहें कि हमारा हर काम जो हुआ उसमें नजर अल्लाह ताला की तरफ कि जिंदगी की इबादत जैसे मैंने अभी आपको बताया इमाम इब्ने तैमिया ने क्या फरमाया हर कौल और अमल जिसे अल्लाह ताला को खुश करना हो। तो अब आप कहीं बैठे भी हैं दोस्तों से बातचीत भी कर रहे हैं तो इनके साथ भी मेरा ताल्लुक अल्लाह की खातिर है। आप वालदेन के साथ भलाई कर रहे हैं अल्लाह ताला इससे खुश होगा। अब अपने बच्चों की निगहदाश्त कर रहे हैं मेरे ऊपर अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारियां दी हैं मैंने इनको निभाना है मेरी पूछो नहीं है। मैं रिस्के हलाल कमाने के लिए निकल रही हूँ तो ये भी रिस्के हलाल कमाना भी है इबादत है और आपकी हर चीज इबादत बन जाएगी। कितना अल्लाह ताला का करम है मगर उसमें सोच कहीं तो हो ना कि मैं क्यों कर रही हूं। फिर उसके बाद अब अल्लाह ताला फरमाता है अब आप सोचें कि ये एक वाहिद सूरत है जिसमें हर आयत मुबारक के बाद अल्लाह ताला जवाब दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इसके बाद भी जवाब मिला हमें और रहमान रहीम के बाद भी जवाब मिला। अब जब हमने ये आयत पढ़ी इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्ताईन तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है यानी बस अब मेरा और इसका मामला अब ये जो मांगेगा इसको अता होगा। अच्छा अब इंसान जो है ना इसको ये भी नहीं पता कि मुझे क्या मांगना चाहिए। अब आपसे पूछा जाए आपकी एक विश इस वक्त आप जो भी विश करें आप पूरी होगी कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। यहाँ पे बता दिया कि वो सबसे बड़ी जरूरत इंसान की वो उसको बता दी गई सिखा दी गई जैसे अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को ना ये दुआ जो उन्होंने मांगी रब्बना ज़लमना अनफुसना ये भी सिखाई थी कि ऐसे मुझसे तौबा करो आदम को तो नहीं पता था ऐसे मुझसे माफी मांगो। तो अल्लाह ताला ने हमें बता दिया आपके लिए क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप ये कहो इहदिना सिरात अल-मुस्तकीम इहदिना हिदायत से हिदायत के तीन माने रास्ता दिखाना रास्ते पे चलाना और मंजिल तक पहुंचाना। यानी एक होता है ना सिर्फ आप किससे रास्ता पूछते हैं वो कहता जाओ वो सीधे जाओगे राइट मुड़ना लेफ्ट मुड़ना वहां पे वो आ जाएगा। दूसरा है कि रास्ते में थोड़ा सा आगे तक जाके आपको दिखा दिया आपको चला दिया कि वहां पे अब आप आगे तो आप खुद ही चले जाएंगे ना यहां तक मैंने आपको पहुंचा दिया वो देखे हम थोड़ा ही रह गया आगे चले। और तीसरा है वो आपका हाथ पकड़ के आपकी गाड़ी में बैठ जाए या आपकी गाड़ी में बैठ के आपको लेकर चले और वहां तक पहुंचा के आए। वो कहते ना मैं दरवाजे तक पहुंचा दिए आपको दरवाजे तक पहुंचा के आए। और किस चीज की हिदायत मांग रहे हैं या कहां कौन से रास्ते की जो रास्ता कहां तक लेकर जाता है जिसकी मंजिल है मकसूद क्या है जन्नत जन्नत तक यानी पहुंचा देना, दिखा भी देना, चला भी देना, क्योंकि बाज दफा दिखता तो है, इंसान चलता नहीं है। आप देखे जो कुरान करीम का कोर्स मुकम्मल कर चुके, दिख तो गया रास्ता, लेकिन चलना उसके ऊपर ये एक अलग से काम है। हम ये नहीं कह सकते कि बस इल्म आ गया है तो बस हमें हिदायत मिल गई, सारी हमें हिदायत मिल गई, नहीं। हिदायत फर्क है, इल्म आना फर्क है, इल्म जरिया बनता है हिदायत पाने का, मगर ये नहीं कोई कह सकता मेरे पास इल्म है तो मेरे पास हिदायत भी है। ये इल्म तो इबलीस के पास भी बहुत था, हिदायत नहीं थी। यहूदियों के पास आगे हम देखेंगे, यहूदियों के पास इल्म बहुत है लेकिन हिदायत नहीं। तो हिदायत वो चीज है जो कि इंसान को इल्म के जरिए हासिल तो हो सकती है, मगर देखिए एक या रास्ता दिखाना वो है इल्म। आपने ले लिया, आपको दिखने लगा, आपको क्लियर होने लगा। मैंने जैसे आपको बताया, आप जब कुरान की अनक लगा लेंगे तो आपको नजर आने लगेगा ये स्याह है, ये सफेद है, ये है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये हराम है, ये हलाल है, सब नजर आने लगेगा। लेकिन उसके बाद अमल तो आपने ही करना है ना, तो रास्ते पे चला भी देना, फिर मंजिल तक पहुंचा भी देना। ये ना हो रास्ते में ही कहीं हम स्लिप हो जाए, अल्लाह ना करे, ये ना हो रास्ते में ही कोई ऐसा मसला आ जाए कि हम मंजिल तक ही ना पहुंच सके। अच्छा फिर रास्ते ऐसा नहीं है कि आपने यानी बहुत बेस्ट हो के इस रास्ते के ऊपर ऐसे चलना है कि आपने जन्नत तक पहुंच के ही खड़े होना है। जो इस रास्ते पे चल रहा है उसको मौत भी आ जाती है तो बस वो जन्नत में पहुंच गया। समझाई बात कि इस रास्ते के ऊपर रहना जरूरी है मरते दम तक। जो इस रास्ते के ऊपर मरते दम तक रहेगा वो मंजिले मकसूद तक पहुंच जाएगा। तो ये वो रास्ता है जो सिरात, सिरात पहले सिरात को समझ लेते हैं। सिरात वो रास्ता है कि जो खुला हो, कुशादा हो, लेवल्ड हो, क्लियर हो, यानी ऐसा रास्ता है बिल्कुल क्लैरिटी है उसके अंदर। ऐसे नहीं है कि कोई कंफ्यूजन है, कोई समझ ही नहीं आ रही, पता ही नहीं चल रहा, वो ना हो। और कुशादा भी हो। एक होता तरीक, आपने जब कभी सऊदी वगैरह में जाए तो कहते हैं तरीक 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 तरीक, रास्ता दो रास्ता दो, आपने सुना होगा अरबों को। तरीक वो रास्ता होता है जो चल चल के बार बार चलने से ना वो रास्ता बन जाए, एक सबील भी रास्ता होता है। तो तरीक छोटा है, सबील उससे बड़ा, लेकिन सिरात बड़ा, जिसको हम कहते हैं ना हाईवे, हाईवे समझ लें। हाईवे कितनी कुशादा होती है, इसमें कितनी सारी लेन्स होती हैं। और मजे की बात यह है कि तरीक का भी की भी जमा है तुरक, सबील की भी जमा है सुबल, लेकिन सिरात की कोई जमा नहीं है। इट मीन्स कि सिरात एक ही होगा। ये नहीं कि हर तरफ ही सिरात है, ये वाला ये भी ठीक है जी, वो भी ठीक है। वो आज के दौर के अंदर लोग ये कहने लग गए कि सारे ही रास्ते ठीक हैं, देखिए जी उन्होंने भी तो खुदा तक पहुंचना है। अब वो उसको भगवान कह देते, कोई बात नहीं। अब फलां हैं वो उसको पता नहीं क्या कह देते हैं, जो भी वो कह देते हैं, तो कोई बात नहीं, है तो सब खुदा की तलाश में ही ना। ये गलत है। सिराते मुस्तकीम याद रखे एक ही है। आप ये नहीं कह सकते कि ये जितने लोग जितने कॉन्सेप्ट्स आज हर तरफ फैले हुए हैं, एक जंगल है फलसफों का और हर एक अपनी अपनी बोली यहाँ पे बोल रहा है, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि एवरीबडी इज राइट। याद रखें ये बात। ये लोग दूसरों को खुश करने के लिए कह देते, नहीं नहीं ऐसे ना कहो कि आप गलत हैं, नहीं वो गलत हैं। ला इलाहा का मतलब क्या है फिर? पहले तो आप इनकार करो कि ये सब गलत हैं, नहीं है कोई इला, फिर आता है इल्लल्लाह। पहले आप ये कहो, आगे इसी में भी आ रहा है, ये सब कहो कि ये सब रास्ते गलत हैं, एक रास्ता है जो सिराते मुस्तकीम है, वो एक ही है। किसी ने मिसाल देनी शुरू कर दी, देखें आप ये भी तो देखें ना, पहाड़ के ऊपर किसी ने पहुंचना, अब कोई इधर से पहुंच रहा है, कोई इधर से पहुंच, पहुंच रहे तो सारे एक जगह ही है ना। नहीं, सिराते मुस्तकीम तो एक ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लाइन खींची थी और फरमाया ये सिराते मुस्तकीम है, जमीन पे खींची और उसके साइडों पे लाइंस खींची, ये गुमराही के रास्ते हैं। जो इससे एग्जिट ले गया, चाहे वो थोड़ा सा ही लिया, डाइवर्ट हो गया, वो गुमराही के रास्ते पे चला गया। तो पहले कहा गया कि हमें गाइड कर दे अल्लाह, चला दे भी, गाइड कर दे भी, मंजिल तक भी पहुंचा देना, बस हम इसी के ऊपर रहें, हमारी मंजिल जन्नत है, जन्नत के रास्ते पे हमें चला देना। जब आपने ये कह दिया तो इसका एक मतलब ये नहीं है सिर्फ कि बस हम नमाजें पढ़ लें, रोजे रख लें तो जी हमें हिदायत मिल गई, और नहीं, आप हर मामले में असल में अल्लाह ताला से रहनुमाई मांग रहे हैं, गाइडेंस मांग रहे हैं कि किसी मामले में कहीं ऐसा ना हो मेरी जन्नत मेरे हाथ से चली जाए। देखिए ना, अब कोई बंदा खड़ा होके शिर्क करना शुरू हो गया, किसी जगह पे जाके कोई ऐसी बात कहता है जो शिर्क वाली है, तो उसने अपना जन्नत का रास्ता खो दिया ना। कोई जाता है खड़ा होके झूठ बोल रहा है, धोखेबाजी कर रहा है, हराम खा रहा है, तो इसने क्या किया, जन्नत का रास्ता खो दिया ना। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे किसी काम से, किसी बात से, किसी चीज से मेरा जन्नत का रास्ता लॉस्ट ना हो जाए। और आप सोचिए कि जब इंसान को कोई चीज चाहिए होती है वो कैसे मांगता है? अच्छा, आपका बच्चा आपके पास अगर आगे कहे घर दे दें, गाड़ी दे दें, जॉब दे दें, आप कहेंगे ये तमीज है मांग नहीं तुम्हें, ये तरीका है कहने का, हम अपने लिए भी नहीं ऐसे बर्दाश्त करते। और अल्लाह ताला के सामने इदने सिरात मुस्तकीम सिरात, हम उसको कोई सबक तो नहीं सुना रहे, हम कुछ मांग रहे हैं, मांगने का भी तो कोई तरीका होता है कि नहीं? और हम सुभान अल्लाह हर मामले में जिंदगी के अल्लाह ताला से सीधा रास्ता मांग रहे हैं, सिर्फ इबादत के मामले में नहीं, हर मामले में, अपने खानदान के मामलात में, अपने काम कारोबार के मामलात में, अपने रिश्ते नातों के मामलात में, अपने पहनने ओढ़ने के मामलात में, अपनी शादी ब्याह के मामलात में, हर एक में, अपनी जॉब के मामलात में, अपनी पढ़ाई के मामलात में, अपने घर की जिंदगी के मामलात में, जिसमें भी अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा देना, वो रास्ता जो जन्नत की तरफ ले जाता हूं, कि इनमें कहीं कोई ऐसी खराबी ना मैं कर छोड़ू कि मेरा जन्नत, मेरी जन्नत मुझसे लॉस ना हो जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह ताला ने ये हमें सिखा दिया, और जिंदगी में ऐसे कई दफा होता है ना, आप सुबह ही करते हैं तो आपको ये चॉइस होती है, ये करूं या ये करूं, इधर जाऊं या इधर जाऊं, ये काम करूं या ये काम ना करूं, मैं ये रिश्ता एक्सेप्ट करूं कि ना करूं। अब क्या, जब आप एहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहते हैं ना, तो आप जहन में रखें मेरे सारे ही कामों ने ठीक हो जाना है, मैंने अल्लाह ताला से रहनुमाई मांग ली है, अपने सारे कामों को जहन में रखें ना, उन सब में सीधा रास्ता चाहिए मुझे, किसी एक चीज में नहीं। मैं तो आजिज हूं, क्योंकि मुझे तो अल्लाह तेरी मदद चाहिए, इबादत में भी तेरी मदद चाहिए और हर मामले में ही तेरी मदद चाहिए। भला इंसान खुद अपनी अकल से तो वो सारे सही फैसले नहीं कर सकता, तो इसलिए वो अल्लाह ताला से मदद मांग रहा है। अब आप जब ये मांग लेते हैं, अब आप मसलन फजर आपने पढ़ी, तो अब आपने कहा इहदिनस सिरात मुस्तकीम, अल्लाह ताला मुझे दिखा दे सीधा रास्ता। अब आप उसके बाद अपनी जॉब पे गए हैं या और अपनी कहीं और कारोबार पे गए, काम पे गए, उसके अंदर आप ये सोच लें कि मैंने अल्लाह ताला से मांगा हुआ है कि मुझे सीधा रास्ता दिखाए, तो अल्लाह ताला मुझे गाइड करेगा, मुझे गाइड करेगा, मुझे सीधा रखेगा, मुझे चलाएगा इस रास्ते पे, सही डायरेक्शन मुझे देगा। आप फिर उसके बाद जोहर का टाइम आ जाता है, जोहर में फिर आप मांगते हैं, फिर जोहर से असर तक आपके लिए गाइडेंस अल्लाह ताला की तरफ से मिल गई, अगर वाकई दिल से मांगा है तो। और सिरात तो ये हो गया, मुस्तकीम कौन सा रास्ता है? सीधा तो हम कहते हैं, मगर कामा से है ना, कामा किसको कहते हैं? खड़े होने को, कयाम इसी से है ना, हम नमाज में कयाम करते हैं। तो जब आपने कहा कामा तो इसका मतलब है सीधा खड़ा होना। तो जब आप सीधे खड़े हों तो अब आप खुद सोचें कि इस रास्ते का मतलब ये है कि ये सीधा खड़ा है। और जब कोई चीज ऐसे खड़ी हो तो इसका मतलब वो बुलंदी की तरफ जा रही है ना। जो जो इस रास्ते पे चलता जाएगा वो बुलंद होता जाएगा। और ऊपर को जाना आसान होता है कि मुश्किल? मुश्किल होता है ना, इंसान का सांस भी फूलता है, इंसान को थक भी जाता है ज्यादा, और एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होती है इस रास्ते पे चलने के लिए, ये चाहिए होगी। इसको ऐसे ही समझे जैसे आखिरत में भी तो एक पुल से रात है ना, जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। तो ये सोच लें, आज जो सोचते हैं कि सिराते मुस्तकीम पे चलना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तो फिर हर चीज को माननी पड़ेगी और ऐसे होगा तो क्या, कैसे हम याद रखें? जो सिराते मुस्तकीम पे चल पड़ा वो ही आखरत के पुल से रात पे चल सकेगा। और सिराते मुस्तकीम में उलमा ने ये भी लिखा है, दो डॉट्स को मिलाने के लिए जो सबसे छोटी लाइन हो वो सिराते मुस्तकीम है। जिंदगी कितनी मुख्तसर है ना, कितनी देर के लिए चलना पड़ेगा, सबसे छोटी लाइन को कहा, सबसे छोटी लाइन जो दो डॉट्स के दरमियान है वो बहुत ज्यादा टाइम है कि आपको हजारों लाखों साल आपने सिराते मुस्तकीम पे चलना है और फिर अपने आप को प्रूव करना है कि मैं इस रास्ते पे चल, बहुत छोटी जिंदगी, इतना सा रास्ता है, यही बस तय करना है। जब ही तो अल्लाह ताला जन्नत वालों से कहेगा तुम कितने अच्छे रह गए ना, इतनी मुख्तसर जिंदगी के अंदर तुमने मुझे राजी करके जन्नत पा ली, और जहन्नम वालों से फरमाएगा तुम्हारी बदबख्ती कैसी है कि तुमने इतनी छोटी सी जिंदगी के अंदर इतना नाराज कर लिया कि जहन्नम में एंड अप हुए। तो एक हमें क्या पता चला कि मुस्तकीम सिर्फ सीधा नहीं है माना, वरना तो सिरात में भी स्ट्रेट का माना आता है और खुले का माना आता है, और यानी कुशादगी का माना आता है, खुला कुशादा वास्ट जिसको कहते हैं। इससे पता चला कि देखें उस रास्ते के ऊपर बहुत सारे लोग चल सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ मैं ही चलूं, और भी लोग होंगे जो चलेंगे, और आगे हमें पता चलेगा कि कितने लोग चल चुके। और दूसरी बात ये, यानी तो कोई तंगी नहीं होगी बहुत सारे लोग भी चले। दूसरी बात ये कि जब कुशादा रास्ता है, क्लियर रास्ता है, तो इससे क्या पता चला कि इसका मतलब अल्लाह ताला इसको वेग नहीं रखा कि कोई कंफ्यूजन हो किसी को, बिल्कुल क्लियर है वो। कोई ये नहीं कह सकता हमें तो समझ ही नहीं आती सिराते मुस्तकीम क्या है, अल्लाह को राजी कैसे करना है, हमें तो समझ ही नहीं आती। नहीं, ये खुला रास्ता है और ये सीधा रास्ता है और ये क्लियर रास्ता है। अब कोई भटकना चाहे तो वो खुद ही उसकी अपनी मर्जी है, वरना ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने बताया नहीं, समझाया नहीं, वो रास्ता बिल्कुल क्लियर है। ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं है, ऐसा कोई पजल नहीं है, या छुपा के नहीं कहीं अल्लाह ताला ने रखा हुआ कि मुझे तलाश करना मुश्किल हो जाए, जैसे खजानों को तलाश करने के लिए लोग जाते हैं। ये क्लियर है बिल्कुल। तो जो चाहेगा सिंसेरिटी के साथ वो सिरात को आसानी से पा लेगा। मुझे अब